नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। चीन के तियेंजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाने पर सहमत। दोनों नेताओं ने विश्व व्यापार को स्थिर करने में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने मालदीव, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, मिस्र और नेपाल के नेताओं से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से वोकल फॉर लोकल भावना के साथ त्यौहार मनाने और भारतीय उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ के बीच बचाव और राहत कार्य जोरों पर, केंद्र ने तीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल बनाए। भारतीय स्वयंसेवी संगठन एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया और एशिया कप पुरुष हॉकी में भारत ने पूल ए में जापान को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने रूस के कजान शहर में अपनी पिछली बैठक के बाद से भारत चीन संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर सहमति व्यक्त की और आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन विकास में भागीदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं, और उनके मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए। बैठक के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला।
सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए।
आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर दोनों नेताओं ने विश्व व्यापार को स्थिर करने में अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं और उनके संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के राज्य सुरक्षा और शांति आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल बिन आंग ह्यांग से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत नीतियों के तहत म्यांमार के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के राष्ट्रपतियों तथा मिस्र और नेपाल के प्रधानमंत्रियों सहित विश्व नेताओं से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इन नेताओं से मिलकर खुशी जाहिर की। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोबार्ट के टोकायेव के साथ अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और कजाकिस्तान ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मा सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के साथ अपनी बातचीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बढ़ रहे हैं और ये एक अद्भुत संकेत है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि मालदीव के साथ भारत का विकासात्मक सहयोग दोनों देशों के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि देशवासियों को स्वदेशी को ध्यान में रखना चाहिए।
आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी, उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ के बीच बचाव और राहत कार्य जोरों पर है। गृहमंत्री अमित शाह कल जम्मू का दौरा करेंगे। वो जम्मू में जारी बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा हाल ही में बादल फटने और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेंगे। श्री शाह कटरा में स्थिति की समीक्षा करेंगे, जहां वैष्णो देवी तीर्थयात्रा मार्ग पर भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट।
गृहमंत्री जम्मू में बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और राजभवन में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें अब तक किए गए बचाव, राहत और पुनर्वास संबंधी कामों की जानकारी देंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर में हुए नुकसान और साथ ही अभी चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों और जम्मू में बुनियादी ढांचे की बहाली पर बातचीत की जाएगी। श्री शाह क्षेत्रों में जारी राहत, पुनर्वास और प्रभावित हुए परिवारों से भी मिलेंगे। बैठक के बाद गृह मंत्री श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा सहित बाढ़ से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है।
प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में अनेक स्थानों पर आज भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीते दो दिनों से लगातार हो रही इस वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर से पिछले तीन दिनों के दौरान प्रशासन ने भूस्खलन के कारण फंसे लगभग 12,000 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित निकाला है, जबकि अभी भी इलाके में करीब 3,000 यात्री हैं जिन्हें निकालने के प्रयास जारी हैं। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
उधर उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में आज भी बारिश जारी रही। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर समेत कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उधर पंजाब भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। लगातार बारिश और प्रमुख नदियों में उफान के चलते कोई राहत नहीं मिल रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सेना, वायुसेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पंजाब पुलिस समेत समूचा राज्य प्रशासन जानमाल की सुरक्षा के लिए 2400 घंटे अथक प्रयास कर रहा है।
पंजाब के आपदा प्रबंधन एवं राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि अब तक राज्य भर में कुल 1,312 गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ के कारण कुछ लोगों की मौत की भी सूचना मिली है, हालांकि पंजाब सरकार ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। उधर भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने आज पठानकोट के माधोपुर बैराज से पार्थिव शरीरों को सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के लिए एयरलिफ्ट किया है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ सहित अन्य ने प्रधानमंत्री से स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय सहायता के साथ तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले दो दिनों तक पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान लगाया है। इस बीच गृह मंत्रालय ने भारी वर्षा, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर ये दल मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करेंगे और संबंधित राज्य सरकारों के राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का उन्मूलन कर दिया जाएगा। वो आज गांधीनगर में गुजरात गृह विभाग द्वारा 217 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इनमें डायल 112 जन रक्षक परियोजना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
जन रक्षक परियोजना की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि एक ही आपातकालीन नंबर से अब नागरिक पुलिस, एम्बुलेंस, फायर और महिला और बाल हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। 1000 से अधिक आधुनिक वाहन इन सेवाओं को मजबूत करेंगे और संकट की स्थिति में निकटतम वाहन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचेगा। यह गुजरात में नागरिक केंद्रित आपातकालीन सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिथिला को ज्ञान और साधना की ऐसी भूमि बताया है जिसने अपनी आध्यात्मिक चमक से दुनिया को प्रकाशित किया है। नई दिल्ली में आज भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में दरभंगा राज के योगदान पर एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि द्वारा रचित न्याय दर्शन भी इसी पवित्र भूमि से उत्पन्न हुआ था।
दुनिया में जब फिलॉसफी की बात चलती है तो पश्चिम की फिलॉसफी से हमारी भारतीय परंपरा में एक बड़ी बात रहती है कि हमारे यहाँ बड़ी परंपरा जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने की है, लेकिन जो भारत में न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने दिया वो बेसिकली सांसारिक जीवन को जीने का एक बहुत मूलभूत मार्ग दिखाता है।
देश के ग्रामीण क्षेत्रों और शैक्षिक दृष्टि से उपेक्षित इलाकों में लड़कियों की शिक्षा के लिए सामुदायिक और सरकारी संसाधन जुटाने के प्रति समर्पित भारत के एक स्वयंसेवी संस्थान द फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस संगठन की स्थापना सामाजिक कार्यकर्ता सफीना हुसैन ने 2007 में राजस्थान में की थी। ये संगठन एजुकेट गर्ल्स के नाम से लोकप्रिय है। बिहार के राजगीर में पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में आज भारत ने जापान को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। एक रिपोर्ट।
राजगीर में खचाखच भरे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने कांटे की टक्कर में जापान के खिलाफ जीत हासिल कर दर्शकों की आकांक्षाओं को पूरा किया। हरमनप्रीत सिंह का शानदार प्रदर्शन जारी रहा और उन्होंने 2 गोल दागकर मेजबान टीम की जीत पक्की कर दी। प्रतियोगिता में इसके साथ भारतीय कप्तान ने 5 गोल पूरे कर लिए हैं। जापान की ओर से 2 गोल क्वाबे ने किए। 3-2 से जीती हुई बाजी में अभिषेक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर।
पुले के अपने अंतिम मैच में कल भारतीय टीम का मुकाबला कजाकिस्तान से होगा। मथुरा के बरसाना में आज राधा अष्टमी उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुबह से ही दुनिया भर से भक्त मंदिरों में आ रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाने पर सहमत। दोनों नेताओं ने विश्व व्यापार को स्थिर करने में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने मालदीव, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, मिस्र और नेपाल के नेताओं से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से वोकल फॉर लोकल भावना के साथ त्योहार मनाने और भारतीय उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ के बीच बचाव और राहत कार्य जोरों पर केंद्र ने 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल बनाए। और भारतीय स्वयंसेवी संगठन एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।